रीना ने भी हामी भर दी। बोलो रीना, वेद ने कहा। रीना चुपचाप वेद के गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अरे क्यों जबरदस्ती खींच रहे हो, मानवी ने नाराज होते हुए कहा। लेकिन वेदांत ने आगे बढ़कर रीना का हाथ पकड़ लिया। चलो रीना, कहते हुए रीना और वेदांत दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। दोनों खुश थे और ये खुशी उनके चेहरों से साफ नजर आ रही थी। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद जाग चुकी थी। दोनों एक साथ गाड़ी में जा रहे थे। रीना बाहर की तरफ देख रही थी मगर उसके मन में तूफान चल रहा था। वो खुश थी, बहुत खुश, मगर उसके साथ ही एक डर भी था। अगर वेदांत फिर से पहले जैसा हो गया तो क्या वो फिर से खुद को संभाल पाएगी? इसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक वेदांत ने उसका हाथ थाम लिया। रीना चौंक गई और उसकी तरफ देखा। वेदांत की पकड़ मजबूत नहीं थी, बस भरोसे से भरी हुई थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार साथ बैठे हों, जैसे दो अजनबी जो एक दूसरे को नए सिरे से जानने की कोशिश कर रहे हों। वेदांत बहुत खुश था, उसके चेहरे पर सुकून था। रीना, उसने धीरे से कहा, चलो जिंदगी की पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं, हम लोग नई जिंदगी शुरू करेंगे। रीना उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। मैं वादा करता हूँ, वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार और इज्जत से रखूंगा, कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रीना की आंखें भर आईं, दिल का बोझ जैसे थोड़ा हल्का हो गया। वो हल्के से मुस्कुरा दी। उस पल उसे लगा शायद डर के साथ साथ उम्मीद पर भरोसा करना भी जरूरी होता है। गाड़ी आगे बढ़ती रही और दोनों की जिंदगी भी एक नए मोड़ के तरफ। सानवी आर्यन से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उसे पता चला कि आर्यन किसी जरूरी मीटिंग में है। सानवी ने रिसेप्शन से कहा और फिर बाहर बने हॉल में बैठकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में इंदिरा अंदर आया। उसने सानवी को वहां बैठे देखा तो रुक गया। तुम यहां क्यों बैठी हो, इंदिरा ने हैरानी से पूछा। सानवी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कृति की वजह से आई हूं, उसने धीरे से जवाब दिया। फिर थोड़ी झिझक के साथ बोली, कोर्ट के बाद आप चले गए थे, मैं आपका शुक्रिया कहना चाहती थी, आपकी वजह से हमें जय मिल गया। इंदिरा हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, उसने कहा, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे पता है कि जय तुम लोगों के साथ ज्यादा खुश रहेगा और जय मुझे भी बहुत प्यार करता है। फिर इंदिरा ने पूछा, लेकिन तुम यहाँ कृति के लिए आई हो, है ना? हाँ, सानवी ने सिर हिलाया। इंदिरा ने गहरी सांस ली। तुम कीर्ति को थोड़ा उसके हाल पर छोड़ दो, उसने कहा, जब उसे अच्छा लगेगा वो खुद ही घर वापस आ जाएगी। सानवी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी आर्यन वहां आ गया। उसकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी। आर्यन ने दोनों को देखकर कहा, अंदर आइए। वे तीनों उसके केबिन में चले गए। आर्यन ने सीधे सानवी से पूछा, हाँ सानवी बताओ, तुम यहाँ किस काम से आई हो? सानवी ने कहा, मैं कृति के पास गई थी, उसे घर चलने के लिए कहा था। आर्यन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। और उसने क्या कहा? सानवी ने एक पल रुककर कहा, उसने कहा है कि वो एक ही शर्त पर घर आएगी। कौन सी शर्त? आर्यन को समझ नहीं आया। सानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो चाहती है कि तुम उससे माफी मांगो। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सानवी जानती थी ये बात कहना आसान नहीं था और इसे मानना उससे भी ज्यादा मुश्किल। आज ज्ञान कपूर के ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई थी, जिस वजह तो न्यारा और ज्ञान भी आज जल्दी घर पहुंच गए थे। किचन में सब्जी की खुशबू फैल रही थी। न्यारा चूल्हे के सामने खड़ी थी, हाथों में करछी, दिमाग में जाने कितने उलझे हुए ख्याल। तभी डोरबेल बजी। न्यारा ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन चूंकि ज्ञान घर पर था उसने ध्यान नहीं दिया। ज्ञान कपूर सोफे पर बैठा था। बेल की आवाज़ सुनकर उसने धीरे से उठकर दरवाजे के पास जाकर पीप होल से देखा और उसी पल उसका चेहरा सख्त हो गया। बाहर सिया रामचंदानी खड़ी थी। सिया, उसका नाम ही काफी था पुरानी यादों का दरवाजा खोलने के लिए। ज्ञान ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए दरवाजे से हटकर वापस आकर सोफे पर बैठ गया, जैसे कुछ देखा ही ना हो। बेल फिर बजी और फिर किचन से न्यारा की आवाज आई, कब से बेल बज रही है, आप खोल क्यों नहीं रहे? ज्ञान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जरूरत नहीं है। न्यारा भौचक्की रह गई, जरूरत नहीं है? कौन है बाहर? जो भी है खुद ही चला जाएगा, ज्ञान ने सपाट लहजे में कहा और उठकर सीधे अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी। न्यारा वहीं खड़ी रह गई। अजीब आदमी है, उसने धीमे से खुद से कहा और फिर से खाना बनाने लगी, लेकिन अब उसका ध्यान करछी पर नहीं था। डोरबेल रुक गई, कुछ सेकंड का सन्नाटा। न्यारा ने राहत की सांस ली ही थी कि डोरबेल फिर बज उठी, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा जिद्दी। न्यारा का दिल हल्का सा धक से रह गया। कौन है जिसे इतनी बेसब्री है? वो बुदबुदाती हुई चूल्हा बंद कर दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने हैंडल पर हाथ रखा, पल भर के लिए रुकी, ज्ञान के कमरे की ओर देखा, वहां सन्नाटा था। न्यारा ने दरवाजा खोलने से पहले ही पीप होल से बाहर झांका। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सलीके से सजी हुई, आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तो इसी वजह से, न्यारा ने अपने आप से कहा, इसीलिए ज्ञान कपूर दरवाजा नहीं खोल रहे। एक पल को दिल में कुछ अजीब सा हुआ, फिर उसने खुद को संभाल लिया। क्या फर्क पड़ता है, उसने धीमे से कहा और दरवाजा खोल दिया। अच्छा तो मैं अंदर आ जाऊं, लड़की ने मुस्कुराकर पूछा।
आ जाइए, न्यारा ने जगह देते हुए कहा। लेकिन ज्ञान कपूर घर पर नहीं है। वो जानती थी अगर ज्ञान किसी से नहीं मिलना चाहता तो वो सच में नहीं मिलता। लड़की ने अंदर कदम रखते हुए न्यारा को ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, सच में ज्ञान कपूर की गर्लफ्रेंड बनने के बिल्कुल काबिल। न्यारा एकदम चौंक गई। नहीं नहीं, वो तुरंत बोली, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की हंस पड़ी, तुम दोनों साथ रहते हो और उसने खुद मुझसे ये बात कही है, उसने सहजता से कहा। कब? न्यारा के मुंह से अपने आप निकल गया, अभी अभी। लड़की ने मोबाइल उठाते हुए कहा, मैंने मैसेज किया कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, तो उसका जवाब आया, मैं घर पर नहीं हूँ, घर पर मेरी गर्लफ्रेंड अकेली है। उसने ये कहते हुए न्यारा की ओर देखा। न्यारा के होंठों पर अनायास ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने फिर दोहराया, देखो ये फ्लैट मेरा है। बस, लड़की ने सिर हिलाया, मैं समझती हूँ, वो नरमी से बोली, तुम अच्छी लड़की हो। फिर वो ज्यादा रुके बिना उठी और चली गई। दरवाजा बंद हुआ, फ्लैट फिर से शांत हो गया। न्यारा वहीं खड़ी रही, किचन की घड़ी की टिक-टिक अब ज्यादा तेज लग रही थी। मैं और ज्ञान कपूर की गर्लफ्रेंड, उसने खुद से कहा, और अगली ही पल वो अकेले ही हल्के से हंस पड़ी। हंसी में हैरानी भी थी, थोड़ी उलझन भी, और कहीं न कहीं एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वो अभी खुद को नहीं देना चाहती थी। सिया के जाने के कुछ ही मिनट बाद फ्लैट में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। न्यारा किचन में खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान अब खाने पर नहीं था। तभी पीछे से कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। ज्ञान कपूर बाहर आया, वो सीधे न्यारा के सामने आकर रुक गया। न्यारा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा। फिर वो सोफे पर बैठ गया। आपने उसे मैसेज भेजा था? न्यारा ने आखिरकार सवाल किया। आवाज शांत थी, लेकिन उसमें चुभन छुपी नहीं थी। कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? ज्ञान ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, एक पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ। न्यारा की भौहें तन गई। क्यों? ज्ञान ने गहरी सांस ली। असल में मुझे पता था कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, अगर दरवाजा खोलता तो बात वहीं अटक जाती। न्यारा ने हाथ सीने पर बांध लिए, तो आप मुझे ढाल बना रहे थे? ज्ञान तुरंत बोला, नहीं ऐसा नहीं है। वो थोड़ा आगे झुका, वो मुझे पहले से जानती है। कहाँ से? न्यारा ने पूछा। उसके डैड सुरेश रामचंदानी, ज्ञान ने सपाट लहजे में कहा।
मेरे शुरुआती क्लाइंट्स में से एक है, बिजनेस मीटिंग्स में वो कई बार साथ आई है। न्यारा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तो आप सीधे मना कर सकते थे? ज्ञान के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आई। मैं नहीं कर सकता न्यारा, ऐसे लोगों को सीधे जवाब देने से बातें उल्टी पड़ जाती हैं। फिर उसने धीमे से जोड़ा, वैसे भी मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। न्यारा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि ज्ञान कपूर हर बार जितना ठंडा दिखता है उतना है नहीं। लेकिन फिर भी न्यारा ने साफ शब्दों में कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ज्ञान चुप हो गया, उसने सिर झुका लिया। मैंने सोचा नहीं था कि वो अंदर आ जाएगी, वो धीरे से बोला, और मुझे लगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। न्यारा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। फर्क पड़ता है, उसने बस इतना कहा, क्योंकि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। एक पल का सन्नाटा। ज्ञान ने उसकी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द वहीं रुक गए। और उसी खामोशी में उन दोनों के बीच कुछ ऐसा खड़ा था जिसे अब नजरअंदाज करना आसान नहीं रहा।